پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارے پروگرام اس وقت انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے, ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو اس وقت آپ ہمارے اردو voa کے فیس بک پیج پر براہ راست سن سکتے ہیں اور ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ان کا تصویری تعارف بھی دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام کو ہمارے پروگرام کے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے, جن کے لنک ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameel voa urdu. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان اور امریکہ میں پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلنے والے دو تعلیمی اور تربیتی پروگرام. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی یونیورسٹیوں کے تعاون سے چلنے والا ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ پروگرام USA, اور ورلڈ بینک, حکومت سندھ اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت دیہی سندھ میں پرائیویٹ اسکولنگ کے فروغ کا پروگرام PPRS. ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ پروگرام ہر سال پاکستان اور دنیا بھر کے ملکوں کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری فلاحی اداروں سے وابستہ تقریباً 200 باصلاحیت افراد کو امریکی یونیورسٹیوں میں لگ بھگ ایک سال کی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے مواقع فراہم کر رہا ہے, اور وہ گزشتہ 38 برسوں میں دنیا بھر کے 4,000 سے زیادہ افراد کو فیلوشپ کے یہ مواقع فراہم کر چکا ہے. جبکہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا SEF گورنمنٹ آف سندھ پاکستان کا پروگرام PPRS صوبے سندھ کے غربت زدہ علاقوں کے بچوں کے لیے 2400 معیاری اسکولوں اور تعلیمی مراکز کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے مفت تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے, اور گزشتہ 24 برسوں میں سندھ بھر کے 400,000 سے زیادہ نادار بچوں کو معیاری تعلیم مفت فراہم کر کے SEF پاکستان بھر کی سب سے بڑی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بن چکی ہے. اور ان دونوں پروگراموں پر گفتگو کے لیے ہم نے مہمان بنایا ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سندھ پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز مختار علی چانڈیو کو, جو گزشتہ 10 سال سے قومی اور بین الاقوامی سطح کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی پائیدار ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں تھرپارکر سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کراچی کے سینئر آفیسر, اور اس وقت امریکی ریاست ٹینیسی کی ایک یونیورسٹی میں زیر تربیت ایک فل برائٹ ہیوبرٹ ہمفری فیلو لال کمار. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahainzindagi, اور ہمارا ایک اور لنک ہے facebook.com/yasmeenjameel voa urdu. اور اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر سننے کے لیے ہمارا لنک ہے urduvoa.com. ہمارے مہمان مختار علی چانڈیو اس وقت موجود ہیں کراچی پاکستان سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ, جبکہ لال کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو میں مائکروفون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم لال کمار صاحب.
وعلیکم السلام.
بے حد شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں براہ راست ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا, اور یہ دوسرا موقع ہے گزشتہ ایک مہینے میں کہ ہمارے پروگرام کا مہمان کوئی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود رہا, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے جو اس وقت براہ راست ہمارا یہ پروگرام اردو voa کے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, لیکن ان کی تصویری تعارف جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور ہم اپنے دوسرے مہمان مختار علی چانڈیو صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم مختار علی چانڈیو صاحب.
وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دی بورڈ.
بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گفتگو کریں آپ کی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں, ہم چاہیں گے کہ پہلے گفتگو کا آغاز ہم ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ کے حوالے سے کریں. تو گفتگو کا آغاز ہم کریں گے لال کمار سے. تو لال کمار صاحب کچھ بتائیے فل برائٹ پروگرام ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ کے بارے میں, جس کے تحت آپ یہاں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک سال کے تربیتی کورس پر ہیں, اور اس سے پہلے کچھ اپنے بارے میں کہ اس پروگرام تک رسائی کے لیے آپ کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے.
میں اسٹارٹ کروں گا میرے جو ہے وہ جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اور جو میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, اور میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں میں نے کس طرح سے جو ہے وہ میرا کیریئر اسٹارٹ کیا اور پھر مجھے فیلوشپ کس طرح سے ملی. تو میرا تعلق جو ہے وہ تھرپارکر کے شہر مٹھی سے ہے. میں نے اپنی اسکولنگ اور کالج وہیں سے کی, اور پری میڈیکل میں میرا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا. اور ایک وقت تھا جب میں پری میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوا, مگر اس میں میرا نہیں ہو سکا فارچونیٹلی انفارچونیٹلی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس دو راستے تھے, ادھر میں اپنے جو ہے وہ فیملی بزنس جوائن کروں یا پھر میں ایجوکیشن کو جو ہے کنٹینیو کروں. تو میری پیرنٹس کی جو ہے وہ سپورٹ تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. اور میں کراچی گیا, وہاں پر محمد علی جناح یونیورسٹی سے میں نے بی بی اے اور ایم بی اے کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان بی بی اے کے دوران ہی میں جو ہے وہ ہوم ٹیوٹرنگ دیتا تھا, وہاں بچوں کو پڑھاتا تھا, اور میں اپنے اخراجات کو جو ہے وہ مینج کرتا تھا. اور 2010 میں میں نے اپنا جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ایز اے انٹرن, اور ابھی جو ہے وہ 2015 میں مجھے ایز اے فوکل پرسن رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے 2013 میں ایم ایس جو ہے وہ زیبس سے وہ بھی اسٹارٹ کیا تھا, وہ بھی ابھی چل رہا ہے.
اچھا, اور اس وقت آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت کام بھی کر رہے ہیں اور چھٹی لے کر آپ آئے ہیں.
جی بالکل.
اور آپ نے یہ یونیورسٹی میں ایک سال کا تقریباً ایک سال کا تربیتی کورس آپ نے جوائن کیا ہے.
جی بالکل.
تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور کون کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, اس کی کیا شرائط ہیں.
ہیوبرٹ ایچ ہمفری فیلوشپ ہے, وہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا اسپانسرڈ ایک پروگرام ہے, فیلوشپ پروگرام جو مڈ کیریئر پروفیشنل کے لیے ہے جو اپنے فیلڈ میں جو ہو اس پہ کام کر رہے ہوں, اور ان کا 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن میں اپنے فیلڈ آف اسٹڈی میں, اور ان کا جو ہے وہ ماسٹر ہو, ان کی جو ہے وہ ڈگری ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور انہوں نے وہ پاکستانی جو پاکستانی سٹیزنز جو جن کا جو ہے وہ جن کے پاس امریکہ کی جو ہے سٹیزن شپ نہ ہو, ڈیول نیشنلٹی نہ ہو, یا وہ پہلے سے یہاں پہ کام نہ کرتے ہوں, تو ان کے لیے یہ پروگرام ہے.
اچھا, اور اس کے لیے مڈ کیریئر تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ایج لمٹ بھی کوئی ہے؟
نہیں, ایج لمٹ نہیں ہے. جو ہے وہ یہاں پر جو ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ کنٹریز کے جو فیلوز تھے ان کی ایج جو 60 کے قریب بھی تھی, وہ یہاں پر پارٹیسپینٹس ہیں, اور دے آر دا ہول ہیڈ آف دیئر پروگرام. تو ایج کوئی لمٹ نہیں ہے. مگر
تو پھر وہ اپلائی کیسے کریں؟
وہاں پر پاکستان میں تو یو ایس ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کے نام سے ایک ادارہ ہے جو فل برائٹ اسکالرشپ اور فیلوشپ کو دیکھتا ہے. وہاں پر اپلیکیشنس اوپن ہوتی ہیں غالباً جون اور جولائی میں ہر سال. تو پہلے جو ہے وہ اپلیکیشنس کال کی جاتی ہیں, وہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپلیکیشن فل کرنی ہے, دین وہ سبمٹ کرنی ہے. اور وہ نیشنل لیول پہ پہلے اپلیکیشن شارٹ لسٹ ہوتی ہیں, ان کے بعد جو ہے وہ یو ایس سے وہ شارٹ لسٹ ہوں گی, اور وہ اگر فائنل ہو جاتی ہیں تو آپ کو انٹرویو کال ہوگی. انٹرویو میں آپ نے اگر کوالیفائی کیا تو آپ کو وہ جو ہے وہ اوارڈ کیا جاتا ہے فیلوشپ.
تو ہر سال یہ 200 تقریباً اسٹوڈینٹس یا پروفیشنلس کو لیتے ہیں پوری دنیا سے؟
ایوریج تو یہی ہے, مگر اٹ ڈپینڈس آن دا فنڈنگ فرام دا یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. مگر ایوریج آن ایوریج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 200 کے قریب جو ہے وہ فیلوز ہر سال آتے ہیں, غالباً کوئی 157 اسٹیٹس سے, کنٹریز سے.
اچھا, اور اس سال 91 ملکوں سے آئے ہوئے.
इस बार 95 कंट्री से आए हैं और 168 फेलोज यहाँ।
अच्छा, और उसमें पाकिस्तानी कितने?
पाकिस्तानी फॉर्चुनेटली हर बार जो है वो पाकिस्तानी जो है वो पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होती है, और मुझे खुशी है कि इस बार जो है वो 19 पाकिस्तानी हम जो है वो यहाँ पर फेलोशिप
हैं। तो इसकी इसका मकसद मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है फलाही कामों में बहुत आगे।
बिल्कुल, और सिर्फ आगे फलाही कामों में अपनी फील्ड में भी आगे हैं, और यहाँ पर भी जो वो अपना हुनर है वो दिखा रहे हैं, और ये दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि वी आर द यू नो कॉम्पिटेंट पीपल।
अच्छा, तो जब यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या सहूलियात मिलती हैं? एक तो ये कि आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट आपको कर देते हैं, तो इसके अलावा आप क्या करते हैं यहाँ पर?
सबसे पहले इस फेलोशिप की अच्छी बात यह है कि ये फेलोशिप में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उसको मैनेज करती है और उसको बियर करती है। तो आपकी स्टाइपेंड है, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो हो अखराजात हैं, आपके इवन आपके ट्रैवलिंग के अखराजात हैं, रहने के अखराजात हैं, वो सारे अखराजात स्टेट डिपार्टमेंट पे करती है। उसके अलावा आपको जो है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ कि आप अपनी प्रोफेशनल और लीडरशिप स्किल को इन्हांस करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं, वो आपको जो है वो लिंक्स और वेबसाइट आपको बताती हैं, और इसके साथ साथ आपको अपनी रिलेटेड जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में एलोकेट करती हैं कि आप अपने एकेडमिक जो स्किल्स हैं उनको भी उस हिसाब से इन्हांस कर सकें। जैसे कि अब मेरी मैं वाबस्ता हूँ वो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से हूँ, और मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो वहाँ पर मुझे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और जो है वो आउटडोर टूर्स टू द डिफरेंट स्कूल्स एंड कम्युनिटीज, तो वहाँ से हमें जो है प्रोफेशनल और लीडरशिप स्किल्स हमारे जो है एनहांस कराते हैं ये।
अच्छा, तो इसके अलावा आप इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, तो ये भी ट्रिप भी उसी में शामिल है?
ये इस जो है वो फेलोशिप का पार्ट था जहाँ पर हमने ग्लोबल लीडरशिप फोरम के लिए जो है वो पार्टिसिपेट किया था चंद दिन पहले, और जहाँ पर हम जितने भी फेलोज थे फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी वो वहाँ पर हम मिले, और हमने एक नेटवर्किंग की विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द स्टेट डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो विद द फेलोज।
तो अब तक आपने अपने शोबे के हिसाब से क्या ऐसा नया सीखा है जो आप पाकिस्तान में होते तो ना सीख सकते?
यहाँ पर तीन चीज़ें जो मैंने नई सीखी वो ये है कि मैं वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में एक एनजीओ से एफिलिएट था, वॉलंटियरली काम कर रहा था, जो कि वो लंच प्रोवाइड कर रहे थे वीकडेज में स्कूल्स में बच्चों को।
अच्छा,
और मेरी ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल कैरियर जब मैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में काम कर रहा था और हम जब जाते थे देहातों में स्कूल को देखने, और वो तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, बच्चे जो है वो हेल्दी नहीं है बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस। तो मुझे लगता है कि फूड और न्यूट्रिशन के प्रोग्राम को जो है वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में या गवर्नमेंट के जो एजुकेशन के प्रोग्राम है उसमें, ताकि बच्चों को जो है वो एक मुतवाजन गिज़ा जो है वो मिले और उसका हेल्दी माइंड होगा तो वो सीख पाएंगे कुछ।
अच्छा,
और इसके अलावा जो है वो एक और ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि जो आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट हो वो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है लर्निंग एनवायरनमेंट हो, तो इसमें ये है कि आप जो है वो इंपावर करें स्टूडेंट को, और इसके साथ जो है वो टीचर की कैपेसिटी जो है वो इन्हांस करें, और टीचर की कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए आपको पेयर ग्रुप बनाना पड़ेगा, टीचर्स को आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को जो है वो टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगी, तो इससे ये होगा कि एक दूसरे से सीखने के मौक़े मिलेंगे, और इस जो है उनकी कैपेसिटी जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वहाँ से भी मिलेगी, और इसके साथ साथ वो स्कूल के अंदर भी जो है वो सीखते रहेंगे कंटिन्यूसली। और तीसरी चीज़ है आईटी, IT is the most crucial जो है वो part for the education now in 21st century. तो हम ये चाह रहे हैं कि e-learning का concept जो है वो देहात के जो schools हैं, rural areas में जो schools हैं उनमें भी लाया जाए, ताकि उनकी जो learning हो वो सिर्फ एक जो है वो sense से ना हो, वो different जो है वो senses से हो, different जो है वो approaches से हो. तो ये टेक्नोलॉजी है वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे. हमने रिसेंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है वो इनिशिएटिव लिया है, मगर हम कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा मज़ीद जो है वो इनको सब किया जाए, एक्सटेंड किया जाए.
तो ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर सीख चुके हैं और आप चाहेंगे कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें अपने शोबों में, जहाँ खासतौर पर जहाँ आप काम कर रहे हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में, वहाँ अप्लाई कर सकें.
जी बिल्कुल.
इसके अलावा आपको इस प्रोग्राम ने एक नेटवर्किंग का मौका भी फराहम किया है, तो कुछ उसकी बात करें कि कितने इतने मुल्कों के लोगों से जब आप मिले, अपने फील्ड के प्रोफेशनल से मिले, तो क्या आपने नया महसूस किया, क्या नया सीखा उनसे और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ?
ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी वो चीज़ें मैंने जब हमारी बातचीत होती है फिर विथ प्रोफेसर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं या फिर जो है यहाँ के फेलोज़ हैं, उनसे हम जब एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, आपके जो है उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, तो जब ये चीज़ें बताते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ये लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो ऑलरेडी उनको जो है वो हमने की हुई हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें प्रोसेसेस के जो है कुछ हम इस तरह से ट्रांसपेरेंट या फिर उसको अल्टर कर सकते हैं कि वो मज़ीद बेहतर हो. जैसे कि फूड और न्यूट्रिशन है, फूड और न्यूट्रिशन को अगर एजुकेशन से इंटीग्रेट किया जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे स्कूल्स में जो अटेंडेंस बच्चों की कम होती है वो फिर अटेंडेंस जो है वो जो इतनी इरेगुलर नहीं होगी, बच्चे आना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ये होता है कि बच्चे बीमार होते हैं तो वो आते नहीं हैं, उनके साथ हेल्थ और हाइजीन के इशू होते हैं. तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, और नए आइडियाज़ को आप अपने इन्वायरमेंट में अपनी जो है वो कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं.
तो ये सब, और आप क्योंकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आए थे, तो इसलिए आपका जो टॉपिक है और जो आपकी जो नॉलेज है, जो आपका यहाँ पर एक्सपोजर है और जो आप चुन रहे हैं अपने लिए, वो यही शोभा है जिसमें आप अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं.
बिल्कुल.
तो बेहद शुक्रिया लाल कुमार, हमारी गुफ्तगू भी जारी है. अब हम इसी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिससे आप वाबस्ता रहे इतने अरसा, और इंटर्न के तौर पर आपने उनको ज्वाइन भी किया था. लेकिन एक पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपसे ज़्यादा पहले हम बात करेंगे मुख्तियार साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ कराची से टेलीफोन पर मौजूद हैं. तो लीजिए पहले एक ब्रेक.
सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इज अ सेमी ऑटोनमस बॉडी. वी आर ट्राइंग टू सर्व अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी अक्रॉस.
SCF's basic mandate is to extend educational facilities in the province, that it's to make education accessible to the communities who do not have direct access to education either through public or private sector.
Sindh je sarhad area khokhra par lag pakke road khan 10 km ware pechran ware ilake somo samma jo hi primary school aaye jithe bhi four wheel gaadi kha sawai pahunchni namumkin aaye. 2009 khan Sindh Education Foundation Promoting private schooling in rural Sindh, पारां हलंदड़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्राइमरी स्कूल हिन भिटन वारे इलाइक़े में कंहिं मौजज़े खां घटि न आहे.
गर्मी में थोड़ा परे जेके ॿारनि उन्हनि खे ज़रूरु तकलीफ़ थींदी आहे, पर असांजो ॿार असांजो इलाइक़ो अहिड़ो, असांजी पैदाश हिन मिटी में आहे, हिन वारी ते आहे, असीं ईअं हलंदा रहंदा आहियूं, वारी ते असांखे एतिरी तकलीफ़ कोन थींदी आहे.
35% जो बचे स्कूल में दाख़िल होते हैं प्राइमरी में, वो 5वीं क्लास तक भी पहुचते नहीं हैं, और अगर पहुचते भी हैं तो उनमें से फिर सिर्फ 3% ऐसे हैं जिनके पास वो स्किल्स हैं या इतनी तालीम वो इससे रूशनास हो चुके हैं कि जो आगे बढ़ सकते हैं.
फर्स्ट I would like to thank the government of Sindh for their crucial support in effecting educational opportunities for rural youth in Sindh province. Next, I would like to thank the Sindh Education Foundation. Without their work on behalf of children and families in Sindh, all would suffer. They are improving the quality of education for all children, rich and poor, throughout the Sindh province, and they should be thanked for their work.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमने मेहमान बनाया है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स मुख्तियार अली चांडियो को जो गुज़िश्ता 10 साल से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के सरकारी और गैर सरकारी इदारों की पायदार तरक्की के लिए कोशिश है और हमारे दूसरे मेहमान हैं थरपारकर सिंध से ताल्लुक रखने वाले सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कराची के सीनियर ऑफिसर और इस वक्त अमरीकी रियासत टेनेसी की एक यूनिवर्सिटी में जेर तरबियत एक फुल ब्राइट ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलो लाल कुमार हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu और facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा एक और लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu जी गुफ्तगू में शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम के दूसरे मेहमान मुख्तियार अली चांडियो को जो कराची से काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन पर तो अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर मुख्तियार अली चांडियो साहब चलिए अब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और हुकूमत सिंध के वो प्रोग्राम कौन से हैं जो इस वक्त सूबे सिंध में तालीम के फरोग के लिए जारी हैं और फिर खुसूसी तौर पर जिक्र करें उस प्रोग्राम का जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से जारी है जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक कर रहा है और जिसकी जिसके हेड रह चुके हैं हमारे आज के मेहमान लाल कुमार
जी थैंक यू यासीन असल में ये है कि एजुकेशन फाउंडेशन 1992 से एक एक्ट के तहत बना और इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन फाउंडेशन में कोई गुज़िश्ता हम 22-23 साल से काम कर रहे हैं ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जिनमें जिसका मकसद खास तौर पे उन बच्चों को उन इलाकों को उन बच्चों उन जो अंडर सर्व एरियाज हैं सिंध के उन बच्चों को लेके आना एक्सेस देना और उनको क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना ये एक प्राइम जो मकसद है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का उसके बनने का और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन क्योंकि एक नीम सरकारी इदारा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का तो इसकी जो मेजर फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आती है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो हमें पार्टनरिंग कर रही है जो बच्चे जहाँ पे हम जहाँ पे गवर्नमेंट और स्टेट नहीं पहुंच पाई सिंध की उन एरियाज में हमने इन बच्चों को जो है वो हमने स्कूल्स खोले हैं और बच्चों को ले आ रहे हैं और उसके अलावा इन शुरू में तो जैसे 1992 से ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का हुआ तो ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का मेजर रोल था उस वक्त ग्रांट देना कुछ स्कूलों को सपोर्ट करना कुछ मदरसों को सपोर्ट करना स्टार्ट ऑफ थिंग्स उसके बाद उन्होंने अपना एक रोल चेंज किया और एक नया जो सिस्टम मुतारफ कराया कि पर चाइल्ड सब्सिडी से हम उन देहाती इलाकों में जहाँ पे स्कूल गवर्नमेंट के नहीं खुल सके हैं एक सेट क्राइटेरिया के तहत एक इनोवेट आइडिया के तहत उन बच्चों को उन स्कूलों में ले आए और वो पर चाइल्ड सब्सिडी मॉडल जो था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर का यानी कि पब्लिक जो है वो फंडिंग कर रही थी उन इंडिविजुअल्स और एनजीओ सीबीओस को जो वहां पे जा सके एक स्कूल इस्टेब्लिश कर सके और एक सेट स्टैंडर्ड के तहत एक मयारी तालीम उन बच्चों जो डिप्राइव जो अंडर सर्व एरियाज है वहां पे दे सके तो बेसिकली 2009 में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कंपोनेंट तहत PPRS प्रोग्राम का प्रमोटिंग प्राइवेट स्कूल इन रूरल सिंध के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने जो टारगेट था दिस वाज द PC1 प्रोग्राम जो कि हमने डिजाइन किया जो कि रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की मदद से वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से 2009 से लेकिन जो टाइम मकसद था कि हम इन इस प्रोग्राम में तकरीबन 1000 स्कूल खोलेंगे और उन 1000 स्कूल में तकरीबन हम कोई 2 लाख बच्चे जो हैं वो इनरोल करेंगे। लेकिन ये टारगेट बढ़ता गया, फिर हमने पहले फेज में 200 स्कूल, सेकंड फेज में हमने 200 स्कूल, इसके बाद फेज 3। अब हम इन प्रोग्राम के अंदर कोई 6 फेजेस कर चुके हैं जिसमें हमने तकरीबन 1400 स्कूल सोली इस प्रोग्राम में खोले हैं और जिसमें इस वक्त हमारे पास जो इनरोल बच्चे इस प्रोग्राम के तहत वो 300,000 प्लस है, यानी कि 3 लाख बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं इन स्कूलों में जो ये 1400 स्कूल है। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोग्राम है एससीएफ असिस्टेड स्कूल का, जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट कर रही है थ्रू सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, और इन प्रोग्राम में भी हम फर्टाइल सब्सिडी और इंडिविजुअल ऑपरेटर्स और उसके अलावा जो हमारे एनजीओ और सीबीओ से उसकी मावनत से हम ये स्कूल चला रहे हैं पूरे सिंध के अंदर।
तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन से मुराद आपकी क्या है, किस क्वालिटी की एजुकेशन है? ये तो मुझे मालूम है कि आप ऑक्सफोर्ड का सिलेबस जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा किस क्वालिटी में और क्या क्या चीजें आप शामिल कर रहे हैं?
जी, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम फंडिंग करें और वो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, एनजीओज एंड सीबीओज हैं, वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उसका उसकी लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट की जाए ताकि वो बच्चा आज के टुडेज वर्ल्ड से कम्पीट कर सके। क्योंकि ये बच्चे जो है वो समझा जाता है कि इनकी तालीम जो है इनको नहीं मिलनी चाहिए या ये पढ़ नहीं सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन है, जो आज की जदीद जो एजुकेशन है उसके साथ इसको ले आए। इस वजह से इन स्कूलों में हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के बुक्स और जो सिलेबस है वो यूज करते हैं। इसके अलावा इन टीचर्स की जो युवा असातजा जो लिए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, उन असातजा को बाकायदे एक प्रोसेस के तहत एक मेरिट बेस्ड एक कम्पिटेटिव रिक्रूटमेंट की जाती है इन स्कूलों में ताकि एक क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, मयार तालीम को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद फाउंडेशन बुक्स देने के साथ, सब्सिडी देने के साथ साथ उन टीचर्स की रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करती है। वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स में होती है और उसके बाद जो है हम इन ऑपरेटर्स की भी कैपेसिटी डेवलप करते हैं ताकि वो बच्चे और उस क्वालिटी एजुकेशन में हम ये भी कर रहे हैं कि अभी तो बहुत ही स्टार्ट है लेकिन हमने बहुत कोशिश करी है इसमें कि हम दे टीचर्स, अच्छे टीचर्स की मदद से हम इन बच्चों को वो तालीम दें जो कि एक प्राइवेट स्कूल जो मेन स्ट्रीम का प्राइवेट स्कूल है, जो फीस जो प्रॉफिट ओरिएंटेड जो प्राइवेट स्कूल है उनके से अगर उससे ज्यादा नहीं तो उनके करीब करीब हम पहुंचे ताकि वो सारी एक्टिविटी, वो सारी स्किल्स जो एक प्राइवेट एक ब्रांड के स्कूल में दी जाती है वो हमारे स्कूलों में दी जाए। और ये बहुत ही चीपर कॉस्ट पर की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त जो पर चाइल्ड कॉस्ट जो है वो तकरीबन 3,000 से 4,000 पर बच्चा पर माहाना है और एक प्राइवेट स्कूल जो ब्रांड का स्कूल है वो तकरीबन 10,000 से 12,000 पर चाइल्ड पर मंथ कॉस्ट पे आ रहा है। लेकिन हम ये स्कूल्स जो है एक क्वालिटी जो है एक जो कि बहुत ही चीपर रेट, यानी ये सिर्फ 800, यू वॉन्ट बिलीव कि हम सिर्फ 800 रुपए की पर चाइल्ड कॉस्ट में इन बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं जो आज के प्राइवेट स्कूल 8 से 10 हजार रुपए में दे रहे हैं। और ये जो है वो उन बच्चों के लिए है जो जिनके वालदेन जो है वो जिनकी इनकम कोई 5 से 10 हजार पाकिस्तानी रुपीज है जो कि इतनी बड़ी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको हमने ये वहाँ इनरोल किया है और वो बच्चे जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। और हम अब कोशिश कर रहे हैं जो हमारी करंट मैनेजमेंट है, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा मैडम नाहिद का दुरानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की, एक सिविल सीनियर सिविल सर्वेंट है, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लाई है स्कूल्स को बेहतर करने के लिए। शी थिंक्स के इन बच्चों को क्योंकि जैसे लाल ने पहले कहा कि टेक्नोलॉजीज का जो जो एक्सपोजर है वो इन बच्चों को बहुत कम है, क्योंकि दूसरे पब्लिक स्कूलों में भी कम है, लेकिन हम आईटी बेस्ड लर्निंग को अब इंकरेज कर रहे हैं, वो आईसीटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इन स्कूलों में, ताकि वो बच्चे जो हैं जो इन स्कूलों में इनरोल्ड हैं उनको एक अच्छी तालीम जो आज के दुनिया में आज के वक्त में इन बच्चों को जैसे कॉम्पीट करना है वर्ल्ड के साथ, तो उन बच्चों को उस तरीके की तालीम देने की हम कोशिश कर रहे हैं।
और आप ये कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं देही, ये सारे स्कूल जो हैं ये देही इलाकों में खासतौर पर हैं, और देही इलाकों में भी वो इलाके जहाँ पर आम स्कूल भी मैसर नहीं है, और आप वहाँ आम स्कूलों की रसाई के यानी एक तो उनको स्कूल फराहम कर रहे हैं, दूसरे क्वालिटी एजुकेशन वाले स्कूल फराहम कर रहे हैं, और वो सिर्फ आप 800 रुपए में फी बच्चा खर्च करके उसको वो उस स्टैंडर्ड की तालीम दे रहे हैं जो दूसरे जो बड़े महंगे स्कूल हैं वो 10 से 12 हज़ार में, और जो एक मेन स्ट्रीम का स्कूल है वो 4 से 5 हज़ार में या 3 से 4 हज़ार रुपए में फराहम करता है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हम कैसे मान लें कि ये मुमकिन है कि जहाँ वो क्वालिटी 10 हज़ार में दी जाती है आप 800 रुपए में दे रहे हैं, कैसे?
जी ये आप विटनेस कर सकती है, हमारे वेबसाइट पे जाके बहुत से लिंक हैं, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उन स्कूलों के पेजेस बने हुए हैं, यू कैन गो, आप कोई भी आप में से जाके कोई भी एनीवन कैन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट, हमारी विजिट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा उन स्कूलों की जो हमारे साथ पार्टनरिंग करें उनके भी डिफरेंट इंडिविजुअली पेजेस बने हुए हैं, उनके लिंक्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, तो वहां जाके उन एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग, क्लासरूम इन्वायरमेंट, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें जो टेक्नोलॉजीज हम दे रहे हैं, जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स की हम तरबियतें कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो चीजें हम लेके आए इनोवेशन के टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग में जितनी भी टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद अपने इदारे में एक हमने लर्निंग सपोर्ट यूनिट डेवलप किया हुआ है, जिसको जिसकी जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों के असातिज़ा को रेगुलर ट्रेनिंग दे और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करे। हम अपनी जो हमारी बेस तो हेड ऑफिस तो कराची में है, लेकिन इन पूरे अजलाओं में हमारी फील्ड और रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ में हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए हुए जिनमें हमने अपने जो ट्रेनर है उनको वहाँ मदद किया हुआ है, उसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी भी आती है और वहाँ पे वो टीचर्स अपनी रेगुलरली कैपेसिटी डेवलप करते हैं वहाँ से, और अपने जो जो महाराना जो तरबियत है उनकी स्पेसिफिकली उनकी जो सब्जेक्ट है उनकी टेक्निक उनके उनकी लर्निंग पेडागोजी जितनी भी है वो सीखने वहाँ जाते हैं, वहाँ पे लर्न करके अनलर्न करके फिर रीलर्न करते हैं, ताकि वो जो गैप है एक जो हमने गैप क्रिएट कर लिया है कि ये बच्चे दही बच्चे जो है वो मॉडर्न तालीम नहीं हासिल कर सकते, या मतलब उनकी रसाई नहीं है, या ये गरीब है तो ये नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए ये सारे प्रोग्राम किए गए हैं।
और इसमें लाल कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं?
हाँ, इन एडिशन टू जो मुख्तियार साहब ने बोला वो ये कि हम ये कहा जाता है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो इतना बेहतरीन है कि एक इंडिविजुअल जिनको हम उनकी सर्विसेज के लिए जो पैसे देते हैं जो 800 रुपए उनमें ये वो करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन देहातों में आसपास के जो कम्युनिटीज़ में उनको वो जो है वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू उनको ये बताया जाता है कि ये स्कूल हम यहाँ पर खोल रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड करते हैं कि आप इनरोल हों और ये स्कूल में मयारी और मुफ्त तालीम दी जा रही है और उनमें जो है वो क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर हैं और उसमें सिलेबस दिया जा रहा है, इवन हमने जो है वो एक हद तक उनको स्पोर्ट मटेरियल भी दिया जा रहा जा मतलब दिया था कि सिर्फ जो है वो क्लासरूम लर्निंग नहीं मगर को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें भी वो बच्चे आगे रहे हैं और एक जो स्कूल को जो है वो फन एरिया हो या लर्निंग एरिया बनाया जाए।
तो इसकी इसकी स्कूल की बिल्डिंग्स की हम बात करेंगे कि क्या ये बिल्डिंग्स चांडी साहब आप बताइए कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये आप बनाते हैं या कोई डोनेट भी करता है, ये इसका क्या सिलसिला है, क्योंकि ऐसे इलाकों में खोले जा रहे हैं जहाँ के कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं थी।
जी बिल्कुल, ये असल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पब्लिक जो है पब्लिक यानी जो गवर्नमेंट जो है वो हमारे थ्रू स्कूलों को सब्सिडी सब्सिडाइज करता है, जितने बच्चे ये ले आएंगे उन 500 रुपया फी बच्चा प्राइमरी लेवल पे और 700 रुपए हम एलिमेंट्री लेवल पे देते हैं। ये 500 रुपए में जो हम उनको देते हैं, जितने ये बच्चे ले आएंगे इन स्कूलों में, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा सब्सिडी मिलेगी इनको, और वो जो सब्सिडी मिलती है 500 रुपए उसमें से ही वो बिल्डिंग बनाते हैं, और इनमें से वो खुद भी करते हैं, अपना भी पार्ट लगाते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट हम भी करते हैं, और इसके अलावा जो है वो फिलैंथ्रोपिक के तहत जो है वो फंड रेजिंग भी करते हैं और वो बिल्डिंग उन्हीं में से बनाते हैं ये।
अच्छा, तो और अगर कोई डोनेट करना चाहे अपने स्कूल की बिल्डिंग को तो आप वो डोनेशन भी ले लेते हैं बिल्डिंग्स का?
नहीं, हम डायरेक्ट नहीं लेते, फिर हम ऑपरेटर को उनके स्कूलों के साथ डायरेक्ट लिंक करवा देते हैं और वो खुद फिर वो उनसे ले सकते हैं।
हाँ, लेकिन आपके सिस्टम में ये चीज मौजूद है कि अगर कोई चाहे कि अपनी अपने घर को या कोई ऐसी जगह जो वो चाहता है डोनेट करना, तो आपका जो ये सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर लेता है?
जी, अलाउ करता है, बिल्कुल अलाउ करता है।
ठीक है, तो लेकिन मैंने आपकी वेबसाइट पर कुछ स्कूलों की तस्वीर देखी, तो आपका कहना है कि सब स्कूलों में खास मयार फराम किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्कूल मैंने ऐसे भी देखे जिनमें बच्चों ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था और उनके क्लासरूम भी और फर्नीचर भी उतना बेहतर नहीं था जितना कि कुछ दूसरे स्कूलों का था, तो इसकी क्या वजह, क्या कुछ स्कूलों के लिए बजट ज्यादा होता है कुछ के लिए कम?
नहीं, वो बजट जैसे मैंने कहा कि तय्यम जो है वो जितने बच्चे स्कूलों में जाते हैं उतने हिसाब से बनते हैं। अब ये हम इस पर रिफॉर्म ला रहे हैं, एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज और एसओपीज बना रहे हैं कि क्या इससे पहले तो क्योंकि हम माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाते थे, अब लेकिन हमने ये सिस्टम बनाया, एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो हम पैसे ज्यादा या कम इस वजह से तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जितने बच्चे ज्यादा होंगे उनको फंड ज्यादा जाएंगे, जितने बच्चे कम होंगे उनको फंड कम जाएंगे। तो दिस इज आवर वर्क, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल का एक मसला रहता है कि वो स्कूल ज्यादा वायबल होते हैं जहाँ पे बच्चे 300 से ज्यादा होते हैं, 400 से ज्यादा होते हैं या 200 से ज्यादा हो, उसके कम जितने भी स्कूल हैं फिर वो उनके लिए ये मसले होते हैं क्योंकि उनको सब्सिडी कम जाती है, क्योंकि ये डिजाइन ऐसा है, मॉडल ऐसा है कि पर चाइल्ड सब्सिडी देनी होती है, और हम ये तय्यम भी इस तरीके से करते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी ऐसे होती है कि हम हर एक बच्चे का पर्सनलाइज प्रोफाइल बनाते हैं, और वो पर्सनलाइज प्रोफाइल जो है हमारे सिस्टम में आता है जिसको हम एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम EMIS कहते हैं, और उसके साथ हम इनकी मॉनिटरिंग विजिट और अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी बायोनुअल असेसमेंट भी लेते हैं, यानी कि उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लर्निंग आउटकम को जांचने के लिए जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है उनके तहत हम जो SLOs बनते हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जितने भी है उसके तहत हम असेसमेंट पेपर्स और उनकी असेसमेंट लेते हैं, एक क्वालिटी ऑडिट होती है ताकि हमें इंश्योर हो सके कि हाँ ये जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो सही जगह पे खर्च कर रहे हैं और वो बच्चे वाकई ही पढ़ रहे हैं। तो वो एक मैकेनिज्म है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये बिल्डिंग्स भी बन रही है और उसके अलावा जो है वो फर्नीचर भी आ रहा है, और फर्नीचर भी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता, अब ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इंकरेज जरूर करते हैं कि ये बच्चे यूनिफॉर्म में आए, लेकिन क्योंकि उनका स्कूल में आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन उनको यूनिफॉर्म पहने से, इस वजह से हम किसी पे सख्ती नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म फिर हम करते हैं कि ये वालदेन की तरफ से आए क्योंकि उनका भी एक पार्ट हो, एक जिम्मेदारी वो भी करे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है फिर हमारे लिए कि बच्चा आए, ये ज्यादा मैंडेटरी है, बच्चा ना आए यूनिफॉर्म के लिए इसको हम डिस्करेज करते हैं।
बिल्कुल, ये और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और उन एरियाज में आप खोल रहे हैं जहाँ के बिल्कुल ही गरीब लोग रह रहे हैं या वो तो अपने खाने पीने के लिए भी उनके मसाइल हैं तो यूनिफॉर्म वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सिर्फ इस वजह से वो स्कूल अपने बच्चे को भेजना ख़त्म ना करें कि उनके पास, उनके बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है। बेहद शुक्रिया मुख्तियार साहब, हमारी मुख्तियार अली चांडियू साहब, हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान और अमेरिका में پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلنے والے دو تعلیمی اور تربیتی پروگرام، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی یونیورسٹیوں کے تعاون سے چلنے والا ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ پروگرام یو ایس اے، اور ورلڈ بینک، حکومت سندھ اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت دیہی سندھ میں پرائیویٹ اسکولنگ کے فروغ کا پروگرام PPRS۔ اور ان دونوں پروگراموں پر گفتگو کے لیے ہم نے مہمان بنایا ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سندھ پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز مختار علی چانڈیو کو، جو گزشتہ 10 سال سے قومی اور بین الاقوامی سطح کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی پائیدار ترقی کے لیے کوشل ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں تھرپارکر سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کراچی کے سینئر آفیسر اور اس وقت امریکی ریاست ٹینیسی کی ایک یونیورسٹی میں زیر تربیت ایک فل برائٹ ہیوبرٹ ہمفری فیلو لال کمار۔ ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/VOA Urdu اور facebook.com/HardamRawahZindagi۔ اور ہمارا ایک اور لنک ہے facebook.com/YasminJameelVOA Urdu۔ جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ لال کمار، آپ سے یہ سوال کروں گی کہ وہ بچے جو بہت غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے جو کسی شہری بچے کا ہوتا ہے، جن کے گھر میں وہ سہولیات نہیں جو شہری بچوں کو حاصل ہوتی ہیں، انہیں عام طور پر جب آپ جو آپ کے اسکول ہیں وہ ایک اچھے اسٹینڈرڈ کی کلاس روم فراہم کرتے ہیں، انگریزی بولنا سکھاتے ہیں، انگریزی ماحول میں ان کو رکھتے ہیں، صاف ستھرے ماحول میں رکھتے ہیں، وہ بچے جب واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو ایک دم سے شوق نہیں لگتا کہ ایک دو ڈفرینٹ کلاسز میں وہ ایک وقت میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ذہنی مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کو؟ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ پھر؟
یہ جو پروگرام ہے، اس میں سب سے اس پروگرام کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک کولابریشن ہے، تو اس کولابریشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس اب جو ہیں وہ جو پڑھے لکھے اگر نہیں ہیں ان کو انگلش تو نہیں آ سکتی، مگر ہم کلاس روم میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہ دور اسکول کے ٹائم کے دوران ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ جو ہے وہ انگلش کے اگر ہمارے جو کلاسز ہیں یا جو باقی سبجیکٹس میں ہم انگلش میں ان کو سکھا رہے ہیں تو ان کو ایک سرٹن اسائنمنٹس اور ہوم ورک دیتے ہیں کہ گھر میں بھی وہ جا کے وہ انگیج رہیں اور وہ لرننگ انوائرمنٹ اور وہ جو لرننگ ہے وہ جاری رہے۔ اور فار ایگزامپل اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا کہ رورل سندھ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اتنا اہمیت نہیں دیتے سینیٹیشن کو اور ہیلتھ اور ہائجین کو، تو ایک پروویژن ہے ہمارے پروگرام میں کہ ٹوائلٹس کا ہونا اور کلین ٹوائلٹس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جو گرلس اور بوائز کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، اس سے چینج یہ آ رہا ہے کہ وہ بچے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں جو ہے وہ ٹوائلٹس ہیں اور یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو ہمیں گھر میں بھی وہ انوائرمنٹ چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے انگلش میں نہ بات کرتے ہوں، مگر ہم جو ٹیکنالوجی ان کو دیں گے، ٹیبلٹس دیں گے یا ان کو جو ہے وہ اب نئی ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ کرائیں گے، تو وہ ای لرننگ کے تھرو بھی وہ گھر میں اپنا ماحول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، وہ انگلش میں پوائنٹ سن سکتے ہیں، وہ انگلش میں الفابیٹ سن سکتے ہیں، ان سے وہ جو ہے وہ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔
نہیں، لیکن ان کا اپنے گھر والوں سے وہ کنیکشن جو کہ ایک جیسے ماحول میں رہنے والے بچوں میں ہوتا ہے، وہ کنیکشن ٹوٹ تو نہیں جاتا؟
وہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے کریں، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ انگلش ہے کیا، وہ کس طرح سے بولی جائے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ اور بہت ساری دفعہ میں یہ بہت کافی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیرنٹ کہے ایک گرل اسٹوڈنٹ کو یا ایک بوائے اسٹوڈنٹ کو کہے کہ آپ جو ہے وہ کام کرنے نہ جائیں، چائلڈ لیبر جو ہمارے پاس کامن ہے वो काम करने ना जाएं खेतों में या कहीं और,
बल्कि
वो पढ़ें, तो ये सबसे सबसे जो है वो बेहतरीन बात है हमारे लिए।
और दूसरे ये कि जो बच्चे जब ये तमाम चीज़ें सीखते हैं, लेटेस्ट हाइजीन की चीज़ें और दूसरी जो सोशल स्किल्स हैं सीखते हैं, तो वो एक तरह से एक वही चीज़ें जाकर अपने घर वालों को सिखाते हैं,
बिल्कुल,
तो एक तरह से उनके घर में और एक समाजी चेंज भी लाने का एक जरिया बनते हैं।
बिल्कुल, और ये है कि काफ़ी दफ़ा जो ये कम्युनिटी सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कम्युनिटी और पेरेंट सपोर्ट करेंगे तो ही बच्चे आ पाएंगे। तो जब वो पेरेंट कहते हैं कि आपका स्कूल वाकई चलता है और आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि हमें घर में भी ऐसा माहौल चाहिए, तो उन्हें लगता है कि जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं।
खासतौर पर जो बच्चे बड़ी क्लासेस में होते हैं वो यकीनन अपने घर में जाकर सफाई का और जो स्टैंडर्ड है एक आम वो उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, और एक और बात यास्मीन जी कि जब एक स्कूल वो उसकी बिल्डिंग और उसकी साफ सुथराई अलग हो पूरे कम्युनिटी से, पूरे बाकी जो घर हैं कम्युनिटी है उससे, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स को और कम्युनिटी मेंबर्स को भी लगता है कि हमें जो है अपना घर भी ऐसा करना चाहिए, हो सकता है ये, भले उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो मगर साफ सुथराई का इन्वेस्टमेंट से और पैसों से ताल्लुक इतना नहीं है,
नहीं
वो कम पैसों में भी हो सकता है।
हाँ।
तो ये एक माहौल क्रिएट हो रहा है।
बिल्कुल, और इससे यानी एक बहुत बड़ा जरिया बना, और सिर्फ 800 रुपए फी बच्चा वो खर्च हो रहा है।
बिल्कुल,
और यही वजह है जैसे कि अभी मुख्तियार साहब कह रहे थे कि 800 रुपए में कम पैसों में भी उसी स्टैंडर्ड की एजुकेशन फराहम की जा सकती है।
बिल्कुल,
आप बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल ना करें बच्चों को इनोवेशन की चीजें सिखाने के लिए। मैंने देखा कि वो मास्क बनाना सिखा रहे थे, उसमें कोई एक आम कागज इस्तेमाल हो रहा था और आम पेंट था, लेकिन वो बच्चे जो है उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करने के लिए ये चीज वो सिखा रहे थे स्कूल।
और फाउंडेशन में भी इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि फॉर एग्जांपल एक थर पार्कर का एरिया है जहाँ पर समर में जो है वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड या कम्बर शहदादकोट और दादू के एरिया है वहाँ पर 50 और अबव डिग्री सेंटीग्रेड पे चल जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो उस उन एरियाज में हम उनको ये नहीं कहते कि आप कंक्रीट के जो है वो ब्लॉक्स पे एक बिल्डिंग खड़ी करें, मगर हम उनको ये कहते हैं कि आपके एनवायरमेंट के हिसाब से, आपके जो है वो कंडीशंस के हिसाब से, जो क्लाइमेट है उनके हिसाब से, जो कॉस्ट इफेक्टिव और मजबूत जो स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो करें। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हमने उनको दी हुई है, ऐसा ना हो कि बच्चे हम कंक्रीट की बिल्डिंग का उनको कहें और बाद में वो बच्चे जो है उस रूम्स में और वो बिल्डिंग में बैठ ही ना पाए, तो माहौल जो है वो ऐसा हो कि फ्रेंडली हो हर लिहाज से,
जैसा कि दूसरे महंगे स्कूल जो कोशिश करते हैं ज़्यादा पैसा खर्च करके, लेकिन एक कम पैसों के साथ भी ये काम हो सकता है कि एक खूबसूरत क्लासरूम पेश किया जा सके, सस्ते रंग इस्तेमाल करके से ही लेकिन क्लासरूम को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो मुख्तियार चांडियो साहब, आप बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या है तो आप क्या कहेंगे? मुख्तियार अली चांडियो साहब,
बहुत है, लेकिन ये है कि हम एक पार्ट प्ले कर रहे हैं टुवर्ड एजुकेशन, जो कि एक सिंध पढ़ाने का जो एजुकेशन का एक ख्वाब है कि हम कहीं पर पहुंचे और आगे जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिंध इज लेगिंग बिहाइंड, एक बहुत पीछे है अदर टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ सोर्सेज आप ले सकते हैं, सैलान का ले लें आप, ये सैलान का ले लें, एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। और इसमें जो है वो इस वक्त सिंध में ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल तकरीबन 40,000 हैं जो प्राइमरी लेवल पे, और जब पोस्ट प्राइमरी की बात आती है यानी कि पांचवी के दर्जे के बाद हमारे पास सिर्फ 2,000 स्कूल बच जाते हैं। अब ये इतना बड़ा गैप है जो पोस्ट प्राइमरी का है, तो ज्यादातर जो है वो बच्चियां खासतौर पे विक्टिम बनती हैं उन ड्रॉप आउट का, कि बच्चे दाखिल तो होते हैं लेकिन आगे चल के वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लेकिन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने ये बहुत बड़ी कोशिश करी है कि एक कंपैरेटिवली 1/4 पे, मतलब यानी कि अगर वो 3,000 रुपए की कॉस्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट, तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उससे कहीं ज्यादा जो एजुकेशन अच्छी क्वालिटी मयारी तालीम है वो 800 रुपए में दे रही है। और उसके अलावा वो बच्चियां जो ड्रॉप आउट होती है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ गर्ल्स ड्रॉप आउट बहुत ही कम है, क्योंकि पहले था, लेकिन अब ये एक्टिविटीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्निक जैसे आप बेकार से लो कॉस्ट मटेरियल से हम लेके आ रहे हैं, तो अब जो है वो एजुकेशन को हम ज्यादा बेहतर पा रहे हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं स्कूल में, अपना क्लासरूम इन्वायरमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी स्कूल्स का एनवायरनमेंट इंप्रूव कर रहे हैं, टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो रहे और ज्यादातर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल हमारे इसी प्रोजेक्ट में तकरीबन 1,26,000 बच्चे थे और इस साल वो 3,00,000 से तजावज करें, यानी कि 100% का रेज आया है। दो उसमें स्कूल भी हमने खोले हैं कुछ में, लेकिन फिर भी एक ड्रास्टिक रेज आया है इन बच्चों को स्कूल में ले आने का। तो लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना और बच्चों की तालीम को ज्यादा इंकरेज करना और मॉडर्न टेक्निक को ले आना, ये हमारी कुछ सक्सेसेस हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हम बहुत कम रेट से हम मुहैया कर रहे हैं। स्टिल बहुत दिस इज अ लॉन्ग वे प्रोसेस, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने शुरुआत ली है, हम उतने बड़े मैग्नीट्यूड पे भी नहीं है, ना ही हम गवर्नमेंट के या एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं हमसे, बहुत ही बड़े हैं, लेकिन हम जितना भी कर रहे हैं, जितनी भी वसाइल है हमारी, छोटा सा इदारा है वो बहुत से काम कर रहा है और वो बच्चियों को तालीम देने और बच्चों को तालीम दे रहे हैं जो कि जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच सका, और वहाँ पे वो तालीम दी जा रही है जो कि मेन स्ट्रीम के स्कूलों में। तो ये कुछ है हमारी सक्सेस स्टोरी।
बिल्कुल, और ये लाल कुमार आप कुछ इसमें ऐड करेंगे?
जी, और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी सक्सेस है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वो इस तरह से कि हमने अपने ऑपरेटर्स को ये उनकी जो फंडिंग का जो तरीक़ेकार है वो ऑनलाइन है, उनके पर्सनल अकाउंट्स हैं उनमें वो पैसा जाता है, और हमने ऑपरेटर्स को भी ये कहा है कि अब अगर सैलरीज देंगे टीचर्स को तो वो भी अपने टीचर्स का अकाउंट जो है वो खोलेंगे। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो अप्रोच है वो टॉप बॉटम है, तो ये दैट इज़ एन अदर सक्सेस स्टोरी फॉर सिंध एजुकेशन।
और फिर रोजगार के मौके आप पैदा कर रहे हैं।
बिल्कुल, हमारे पास जो है वो 6,000 से ज़्यादा टीचिंग स्टाफ है, 3,000 के करीब जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है एग्जिस्ट, और 1,500 हमारे पास अब जो है वो नए ऑपरेटर्स आएंगे, उनमें जो है वो फीमेल ऑपरेटर्स भी हैं और मेल ऑपरेटर्स हैं। तो इसके साथ ये जो 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 ये चीज़ है इसमें जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का भी जो एक एलिमेंट है वो भी जो है वो उभर के आता है कि हम फीमेल्स को जो है वो इनक्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो भी जो है वो टीचर्स या फिर ऑपरेटर्स बन के वो एज अ लीडर इन एजुकेशन सिस्टम में उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करें।
बिल्कुल, और फिर पॉवर्टी एलिविएशन का जो टारगेट है मिलेनियम गोल वो भी एक तरह से पूरा हो रहा है।
बिल्कुल, इससे वो ज़्यादा इतना इम्पैक्ट ना भी पड़े, मगर हम जो है वो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ उसमें जो इस प्रोग्राम के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो डायरेक्ट नहीं लेकिन बिलवास्ता तरीके से सोशल चेंज लाने का बड़ा जरिया बन रहा है ये आपकी फाउंडेशन जो गवर्नमेंट के था। तो अब मुख्तियार साहब, आइंदा के क्या आपके टारगेट्स हैं? अभी तो 3-4 लाख आप कह रहे हैं कि बच्चे शामिल हो चुके हैं इन स्कूलों में, अब पहले तो जल्दी से ये बता दीजिए कि वो बच्चे खुद आते हैं कि आप परसू करते हैं, और बच्चों को लाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कि वो उन्हें स्कूलों तक लाएं?
नहीं, बिल्कुल, अब हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चे अब खुद आ रहे हैं। पहले था, हमें कम्युनिटीज को मोटिवेट करना पड़ता था, जैसे आपने कहा कि वो मिंगल हो पाते हैं एनवायरमेंट में नहीं, यहाँ स्कूल और घर में, अब वो बच्चों को खुद लेके आते हैं, खुद बच्चे आते हैं, पैदल आते हैं, थोड़ा सा दूर जो बच्चे रहते हैं उनको वो खुद वालदेन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से ऑपरेटर्स भी कर रहे हैं। तो हमने एटलीस्ट ये एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया है कि हमें अब बच्चों को मजे नहीं करना पड़ा, वो खुद आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक डिमांड क्रिएट कर दी है, सप्लाई खुद आएगी आपकी, तो वो आ रही है और अब जो है वो आप आगे जा रहे हो। और इस वक्त हमारे पास फाउंडेशन का जो पोर्टफोलियो है पूरा, एक प्रोग्राम का 3,00,000 है, लेकिन टोटल जो फाउंडेशन का पोर्टफोलियो उसमें 4,50,000 तक के बच्चे हैं, और हम ये टारगेट कर रहे हैं कि कमिंग 2-3 ईयर्स हम इसको 1 मिलियन तक ले जाएं। और क्योंकि इस वक्त सिंध में 6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पार्ट प्ले करें और जितने भी आउट ऑफ स्कूल, 2 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है उनको ले आए, ताकि हम एक सोसाइटी में एक पार्ट प्ले कर सके, सोसाइटी में वो पार्ट प्ले करे कि भाई हम जो है वो इकोनॉमी को भी बढ़ाएं और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करें और جہاں پہ بچے جس طریقے سے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں اور مختلف ابیوزز کا شکار ہو جاتے ہیں, ایکسٹریمزم کا شکار ہوتے ہیں, ان کو ہم کم سے کم رکھے اور ان کو اسکولوں میں لے آئیں تاکہ ہم گرو کر سکیں آگے اور اکانومی میں اپنا پارٹ پلے کر سکیں.
بالکل. اور اس کے علاوہ اس وقت اگر جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, وہ ادارے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, وہ چاہیں کہ آپ کے اس مشن میں کسی انداز میں شامل ہو سکیں, تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟
بالکل, وہ آگے آئیں اور ان جو اسکولس ہیں, جو لنکس ہیں, ان کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جیسے لال نے کہا کہ ہمارا ایک کمپیٹیٹو بیس آپریٹر سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے اور اس کے علاوہ اسکول ٹائپ سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے, اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہے. تو ہم کہیں گے ان کو کہ جو بھی فلنتھروپسٹ ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں کچھ, وہ ڈائریکٹ اسکولوں کو کچھ کسی چیز میں اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم, کہ ان کو ٹیچنگ ایڈز میں, لائبریریز میں, بکس میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یا کسی اور مد میں اگر سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ان اسکولوں کو مدعو کر سکتے ہیں. ان کی ڈیٹیلس ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, اگر چاہیے ہوں گے تو ہم مہیا بھی کریں.
تو ویب سائٹ کا لنک بولیے لال کمار.
سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن .org.sp.pk. تو وہاں پر جا کے ہمارے جو ہے وہ آپریٹرس اور این جی او سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے, وہ آپ تفصیل سے دیکھیے گا. تو وہ جب بھی ہم اناؤنس کریں گے ان کی ڈیٹس تو یو کین اپلائی فار دیٹ.
اور پھر آپ ان کے مشن میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی بلڈنگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کتابوں کے لیے مدد کر سکتے ہیں, جس انداز سے بھی چاہیں. اور اگر کسی کا اپنا اسکول ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرے, تو شاید وہ آپ کے ساتھ مل کر اس کو کر سکتا ہے کچھ
فاؤنڈیشن,
ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ممکن ہے. اچھا, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ چاہیں تو ہم ان کی فیس بک کا لنک اپنے پروگرام کے فیس بک پیج پر اس پروگرام کے بعد لگا دیں گے. تو جو بھی ان سے رابطہ کرنا چاہے اس فیس بک کے لنک سے یا ان کی جو ویب سائٹ کا لنک ہے اس سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو بے حد شکریہ لال کمار صاحب, اور بے حد شکریہ مختار چانڈیو صاحب, ہمارے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. تو ہماری پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے چاند. یاسمین جمیل کو اب پروگرام کو سمیٹنے کی اجازت دیجیے, اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے پروگرام کے مہمان کون تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان تھے پاکستان اور امریکہ میں پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلنے والے دو تعلیمی اور تربیتی پروگرام, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکی یونیورسٹیوں کے تعاون سے چلنے والا ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ پروگرام یو ایس اے, اور ورلڈ بینک, حکومت سندھ اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت دیہی سندھ میں پرائیویٹ اسکولنگ کے فروغ کا پروگرام PPRS. ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ پروگرام ہر سال پاکستان اور دنیا بھر کے ملکوں کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری فلاحی اداروں سے وابستہ تقریباً 200 باصلاحیت افراد کو امریکی یونیورسٹیوں میں لگ بھگ ایک سال کی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے مواقع فراہم کر رہا ہے, اور وہ گزشتہ 38 برسوں میں دنیا بھر کے 4,000 سے زیادہ افراد کو فیلوشپ کے یہ مواقع فراہم کر چکا ہے. جبکہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا ایس ای ایف گورنمنٹ آف سندھ پاکستان کا پروگرام PPRS صوبہ سندھ کے غربت زدہ علاقوں کے بچوں کے لیے 2400 معیاری اسکولوں اور تعلیمی مراکز کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے مفت تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے, اور گزشتہ 24 برسوں میں سندھ بھر کے 400,000 سے زیادہ نادار بچوں کو معیاری تعلیم مفت فراہم کر کے ایس ای ایف پاکستان بھر کی سب سے بڑی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بن چکی ہے. اور ان دونوں پروگراموں پر گفتگو کے لیے ہم نے مہمان بنایا تھا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سندھ پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز مختار علی چانڈیو کو, جو گزشتہ 10 سال سے قومی اور بین الاقوامی سطح کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی پائیدار ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان تھے تھرپارکر سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کراچی کے سینئر آفیسر, اور اس وقت امریکی ریاست ٹینیسی کی ایک یونیورسٹی میں زیر تربیت ایک فل برائٹ ہیوبرٹ ہمفری فیلو لال کمار. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/VOA Urdu اور facebook.com/HardamRawahZindagi اور ہمارا ایک اور لنک ہے facebook.com/YasminJameelVOA Urdu۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
کراچی پاکستان سے ٹیلی فون پر، جبکہ لال کمار ہمارے ساتھ موجود تھے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو میں مائکرو فون پر ہمارے ساتھ۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔